खुदावंद का शुक्र भी करता हूँ कि उसने मुझे आज ये मौका बख्शा कि मैं आज आपके साथ मिलकर खुदावंद का पाक कलाम सीख सकूँ। एक बात मैं अपनी तरफ से, अपने ख़ानदान की तरफ से, अपने चर्च की तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर भी कहता हूँ और चाहता हूँ कि ये नया साल खुदावंद हम सब के लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आए। और जिस तरह खुदा का खादिम पलूस इस बात को बयान करता है, इसलिए कि जितने मसीह यसु में हैं वो नया मखलूक हैं। अगर तुम खुदावंद यसु में हैं तो हम नया मखलूक हैं, और नया मखलूक बनने के लिए अजीजो हमें नए सिरे से पैदा होने की ज़रूरत है। मुझे ये हक नहीं दिया किसी ने कि मैं किसी को जज करूं, हम खुद अपने आप को जज करें कि अगर हम नया मखलूक हैं तो हमने नए सिरे से पैदा होने की ज़रूरत है। अगर हमने नया मखलूक बनना है तो खुदावंद के वादू पे खड़ा होना होगा। तो मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा था कि नया साल हर साल खुदावंद हमारी ज़िंदगी में बख्शता है। क्या हमने कभी ये प्रोग्राम बनाया है कि ये साल हम अपने आप को खुदावंद के हाथों में दें, खुदावंद के हाथों में दें? नया साल अभी आता नहीं, हम अपनी फैमिली के साथ प्रोग्राम बनाने शुरू कर देते हैं कि इस साल हम ये करेंगे, इस साल हम वो करेंगे, पर कभी हमने ये सोचा है कि खुदावंद के लिए ये नया साल, एक साल उसने हमें बख्शा है तो खुदावंद के लिए हमारा क्या प्रोग्राम है, खुदावंद हमसे क्या चाहता है? जैसे आपने कहा कि वो अपने वादे के मुताबिक यहाँ मौजूद है, क्योंकि ऐसा उसके कलाम में लिखा है कि जहाँ दो या तीन मेरे इनाम में इकट्ठे हैं तो मैं वहाँ मौजूद हूँ। और खुदा दीदो इंसान नहीं जो झूठ बोले, हम दो या तीन से कहीं ज़्यादा हैं, वो हमारे दरमियान मौजूद है। और आज वो मुझसे आपसे बात करना चाहता है, आज वो हमें बरकत देना चाहता है। तो अपनी बाइबल को निकालें, एक आयत में आपके सामने रखना चाहता हूं, गिनती की किताब उसका 23 बाब और उसकी 19 आयत, गौर कीजिएगा। गिनती की किताब उसका 23 बाब और उसकी 19 आयत में लिखा है, खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, और ना वो आदमजाद है कि अपना इरादा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, या जो फरमाया उसे पूरा ना करे? खुदावंद के पाक कलाम पे पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद हम सबको बरकत बख्शे। अजीजो, ये हवाला और इस हवाले के मुताबिक खुदा मेरी तरह, आपकी तरह, दुनिया की तरह इंसान नहीं है जो झूठ बोले। खुदा ने जो कहा उसे पूरा करता है, क्योंकि वो वफादार खुदा है, और वो अपने लिए ऐसे लोग ढूंढता है, क्योंकि खुदा कहता है कि मैं वफादार हूं, मुझे वफादार लोग चाहिए, मैं पाक हूं, मुझे पाक लोग चाहिए, मैं सच्चा हूं, मुझे सच्चे लोग चाहिए। इसलिए कलाम में यह बात लिखी है कि खुदा इंसान नहीं जो झूठ बोले, और ना वो आदमजाद है कि अपने इरादों को बदल ले। मगर एक बात है जो खुदा को अपना इरादा बदलने पर मजबूर कर देती है, हालेलुया, एक बात है, और हमारे पास वो हथियार मौजूद है जिसके वसीला से हम खुदा के इरादे, खुदा के प्लान जो हैं बदल सकते हैं, और वो क्या है? वो है दुआ। और कलाम में जीजो ऐसे बहुत से रेफरेंस मिलते हैं जिनके वसीला से हम खुदा के इरादों को बदल सकते हैं। यूना नबी का सहीफा उसके 3 बाब में लिखा है, अगर हम उसकी पहली 10 आयात को देखें तो वहां लिखा है कि जब दूसरी बार यूना पर खुदा का कलाम नाजल हुआ तो खुदा ने उसे हुक्म दिया कि उस बड़े शहर नैनवा को चला जा और वहां जाकर यह मनादी कर, यह ऐलान कर कि 40 दिन के बाद मैं नैनवा को तबाह बर्बाद कर दूंगा। आखिर क्यों, आखिर क्यों खुदा उस बड़े शहर को, उन लोगों को तबाह बर्बाद करना चाहता है? क्योंकि कलाम इस बारे में तस्दीक करता है और कलाम में लिखा है कि वहां बराई अरूज पर थी, और कलाम में लिखा है कि खुदा गुनाहगार को तो प्यार करता है मगर गुनाह से उसे नफरत है। इसलिए खुदावंद उन्हें बार बार मौके बख्शता है मगर वो अपनी बुरी रफ्शों से तौबा नहीं करते, खुदावंद के हजूर आते नहीं हैं, अपने गुनाह का इकरार नहीं करते। तो खुदा ने अपने नबी को वहाँ भेजा जिसने भी अपना दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया। मगर खुदा किसी को चुनता है तो फिर अपना काम उससे ज़रूर लेता है, उससे अपना काम लेकर उसे छोड़ता है, क्योंकि वो अपना इरादा तब्दील नहीं करता, वो अपने पलायन चेंज नहीं करता। उसने यूना को इस काम के लिए मुकर्रर किया कि वहां जाकर मनादी कर कि 40 दिन के बाद मैं शहर को तबाह बर्बाद कर दूंगा। तो जब उसने वहां जाकर ये मनादी की और ये खबर कलाम में लिखा कि जब बादशाह के कानों तक पहुंची तो बादशाह ने क्या किया? खूबसूरत बात है, बादशाह ने ताट ओढ़ लिया, उसने अपने शाही लबास की फिक्र अजीजो नहीं की कि लोग क्या कहेंगे कि एक बादशाह ने टाट ओढ़ लिया है, जमीन पर बैठ गया, सर पे राख डाल ली है। पर उसने अपनी कौम को, अपने शहर को बचाने के लिए जमीन पर बैठ गया और रोजे और दुआ की मनादी करा दी, क्योंकि बुत प्रस्ती भी वहाँ अरूज पर थी। इसलिए बादशाह इस बात का ऐलान करता है कि जिस जिस खुदा को आप मानते हैं, जिस जिस खुदा को आप पूजते हैं, उसकी परस्तिश करो ताकि आसमान के खुदा को हम पर रहम आ जाए और हम हलाक होने से बच जाएं। तो क्या हुआ, जानवरों तक भी उन्होंने प्यासा रखा, चारा तक नहीं दिया। तो जब खुदा ने आसमान से जमीन पर नगाह की तो क्या देखते हैं कि उसके लोग खाकसार बनकर अपनी बुरी रफ्शों से तौबा कर चुके हैं, अपनी बुरी रफ्शों से अपने गुनाहों का इकरार कर चुके हैं। तो फिर खुदा ने अपने इरादे को बदला। दसवीं आयत में इस बात का जिक्र मिलता है, कलाम में लिखा है कि फिर खुदा ने अपना इरादा बदला। किस बात ने इरादा बदल दिया? दुआ और रोजे ने। तो जीजो इस साल में खुदावंद के साथ अपना प्लान बनाएं। अगर हमारी जिंदगी में खुदा का कोई ऐसा प्लान है, हमें कोई दुख तकलीफ से गुजरना है, किसी अजीज ने अगर आपको पता चलता है तो दुआ और रोजे में बैठ जाएं, अपने खानदानों के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, अजीज रिश्तेदारों के लिए दुआ करें, तो देखें किस तरह खुदा अपना प्लान बदल लेता है। क्योंकि कलाम कहता है कि वो किसी गुनाहगार की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। और खुदावंद यीशु के मुंह के अल्फाज हैं कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो इसी तरह हलाक होंगे। क्योंकि बनी इसराइल खुदा की कुदरत को देखते और उस नजात के कामों को देखते तो बार बार गुनाह करते थे और वो हलाक होते चले गए। जिन लोगों को वह निकाल कर लेकर आया था वो वहीं विजडम में, उस बियाबान में मर गए, क्योंकि वो खुदावंद की कुदरत को देखते हुए भी ईमान नहीं रखते थे। खुदावंद कहता है कि 40 वरे तक मैं तुहाडे नाल बियाबान च रहा, कदी अग दस्तून च, कदी बदल दस्तून च, कदी तुहाडे खेमे अगे चौकीदारा करदा रहा। मगर वो लोग फिर भी खुदावंद कहता है कि तुम गर्दन कश हो, मगर अपने लोगों को प्यार जरूर करता है। उसने अपना इरादा नहीं बदला, जो वादा का मुल्क देने का उसने मुल्क कनान का वादा किया वहां वो उन्हें लेकर गया है। दूसरी नस्ल वहां पहुंची है जो खुदा और के खौफ में जिंदगी गुजारती थी। इसलिए अजीजो इस नए साल में आज खुदा के साथ वादा करें। और एक बात और मैं कहता हूं, कभी किसी इंसान के साथ वादा ना किया करें। क्योंकि इंसान के साथ जब इंसान वादा करता है तो वादा खिलाफी होती है, तो इंसान जो है अपनी बात दिल से निकालता नहीं है, मगर हमारा खुदा जो है वो वफादार खुदा है। खुदा के साथ अगर वादा खिलाफी भी हो जाए तो खुदा माफ़ कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारे ख्याल मेरे ख्याल नहीं हैं, तुम्हारे ख्याल लड़कपन से ही बुरे हैं, मगर बार बार की तौबा भी अच्छी नहीं है। ये बात भी बताता चलूं कि बार बार की तौबा अच्छी नहीं है। अगर तौबा करते हैं तो उस पर कायम रहें, उस पर बिल्कुल अटल फैसला रखें, तो देखें फिर खुदामंद हम पर कैसा मेहरबान होता है। तो बात कर रहा था, खुदा अपने इरादे इस तरीके से बदलता है जब हम अपनी गलतियों का, खताओं का खुदामंद के सामने इकरार करते हैं। नैनवा के लोगों ने अपनी गलतियों का, गुनाहों का इकरार कर लिया। बादशाह ने अपनी कौम को बचाने के लिए टाट ओढ़ लिया, रात पर बैठ गया, रोजे की मनादी करा दी, तो किस तरह खुदावन ने उन पर रहम किया और रादा बदल लिया। पूरी कौम बैठ गई जमीन पे, बादशाह समेत, खुदा ने अपना इरादा बदल लिया। अर्ली रसूली कलीसिया को देखें, कितने दुख तकलीफों में से गुजरी। कलाम में लिखा है को वो रोटी तोड़ने, दुआ करने, हर एक चीज इकट्ठे थी। जब हम एक रूह एक जान होकर दुआ करते हैं तो फिर खुदा अपने इरादे बदलता है। एक और बात बताना चाहता हूं, दूसरा किंग चैप्टर 20 वर्स 1-6, दूसरा सलातीन उसके 20 बाब और उसकी पहली 6 आयात को अगर हम देखें तो वहां हमें हिजकिया बादशाह की एक खूबसूरत कहानी नजर आती है। और कलाम में लिखा है कि जब हिजकिया के जिंदगी के दिन पूरे हो चुके, यहां तक कि मरने की नौबत उसकी आ पहुंची, वो मरने लगा, तो खुदा ने अपने बंदा यशायाह बिन अमोस के बेटे के जरिए उसे ये पैगाम भेजा कि भाई तू अपने घर का बंदोबस्त कर ले, तू बचन नहीं लगा। यहां भी हम देखते हैं खुदा ने कह दिया वो पूरा होगा। और यीशु मसीह मत्ती की अंजील 24:35 आयत में कहते हैं कि आसमान और जमीन टल जाएंगे मगर मेरी बातें हरगिज ना टलेंगी। खुदा यीशु के भी तीनों अंजील में इस बात का जिक्र है, लूका की अंजील, मरकज की अंजील और मत्ती की अंजील। खुदा यीशु कहता है मैं तुमसे सच कहता हूं कि आसमान और जमीन टल जाएंगे मगर मेरी बातें हरगिज ना टलेंगी। कौन सी ऐसी बात है जो खुदा को मजबूर कर देती है? हिजकिया की जिंदगी के दिन पूरे हो चुके तो खुदा ने अपने बंदा के जरिए उसे यह कलाम भेजा, यह पैगाम भेजा कि तू अपने घर का बंदोबस्त कर ले, तू बचन नहीं लगा, तू मर जाएगा। मगर जब उसको यह पैगाम पहुंचा तो हिजकिया जार जार रोने लगा, जार जार रोने लगा। उसने यह नहीं किया कि खुदा ने जो किया है कह दिया वो पूरा होगा, यकीनन पूरा होता है। मैं दुनिया में जो खाना पीना है, ऐशो इशरत करनी है, खा पी लूं। उसने अजीज बैनर भाइयों, मेरे बेटे बेटियों, खुदावन ने उसे जो पैगाम भेजा तो हिजकिया ने ऐसा हरगिज नहीं किया। उसने जार जार रोना शुरू कर दिया और कहा खुदावन अपने वादे को याद फरमा। यह बड़ी खूबसूरत बात है, वादा वही याद खुदावंद को दिला सकता है अगर हमारे अंदर खुदा का कलाम होगा, अगर हम वादा याद दिलाने के काबिल होंगे। खुदा कोई इंसान नहीं, खुदा बुलखड़ नहीं है कि बात करके भूल जाए, मगर अगर मैं खुदावंद को वादा याद दिलाता हूं तो मेरे अंदर वो खूबी होनी चाहिए कि मैं खुदावंद को उसका वादा याद दिला सकूं। इसलिए हिजकिया कहता है कि खुदावंद अपने वादे को याद फरमा कि जो तेरे हजूर भला था मैंने वही किया है। तो फिर खुदा ने उसकी फरियाद को सुन लिया और कलाम में लिखा तो वो दीवार की तरफ मुंह करके दुआ करने लगा। तो फिर खुदा ने अपने बंदा की मार्फत उते कलाम भेजा कि देख मैं तेरी दुआ मेरे हजूर मेरे कानों तक पहुंची है और मैंने तेरी दुआ सुन ली है, देख मैं तुझे 15 बरस जिंदगी के और बख्शूंगा। हालेलुया, हालेलुया। کس چیز نے خدا کا ارادہ بدل دیا؟ دعا نے. بہت سے ریفرنسز ملتے ہیں, آپ خداوند کے پاک کلام کو جاننے والے ہیں, پڑھنے والے ہیں, کلام کا ذوق رکھتے ہیں. دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جو خدا کے ارادوں کو بدل دیتی ہے. حزقیاہ کی زندگی کے دن پورے ہو گئے دعا کرنے کے وسیلہ سے. اپنی زندگی کے 15 برس اس نے اور بڑھا لیے, اور خدا نے جس بیماری میں وہ مبتلا تھا اس سے بھی خدا نے اسے شفا بخشی. یہ ہے میرا اور آپ کا خدا, وہ اپنے وعدوں میں سچا اور برحق ہے. اعمال کی کتاب پر تھوڑا غور کیجئے گا, ذہن میں آ گیا یہ حوالہ. اس کے 12:3-8 میں پترس کی کلیسیا کا ذکر ہمیں نظر آتا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ پترس جو ہے وہ جیل میں ہے, جیل میں ہے, اور پیچھے پترس کی جو کلیسیا ہے وہ دل و جان سے ایک روح ایک جان ہو کر, ان کا ایک پرپس تھا کہ پترس کو قید خانہ سے رہائی دلانی ہے. ان کی دعا کا ایک پرپس تھا. ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اتنی لمبی چوڑی لسٹ خدا مند سامنے رکھ دینا. میں یہ نہیں کہتا کہ مانگنا نہیں چاہیے, مانگنے کا ایک طریقہ ہے, دعا کے ایک حصے ہیں کہ کس وقت ہم کون سی چیز اپنے خداوند سے مانگ سکتے ہیں. غور کیجئے گا, غور طلبات ہے. ان کا ایک پرپس تھا. اعمال 12:3-8 تک کیا ہوا؟ ان کا یہ پرپس تھا کہ دعا کرنے کے وسیلہ سے پترس کو رہائی ملے گی, اور وہ ایک روح ایک جان ہو کر دعا کر رہے ہیں کہ پترس کو قید خانہ سے رہائی دی. اور جب انہوں نے دعا کی تو مدد کے لیے آسمان سے خدا کا ایک فرشتہ اتر آیا. ہیلیلویا, ہیلیلویا, ذرا اونچی بولیں ہیلیلویا. تو بات کر رہا تھا کہ پترس کی کلیسیا نے پترس کے لیے دعا کی تو مدد کے لیے آسمان سے خدا کا فرشتہ اتر آیا. آسمان سے فرشتہ اتر آیا, اس نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ مارا کہ جوان اٹھ, اپنی کمر کا پٹکا باندھ, جوتی پہن. اور وہ سمجھا کہ شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں, مگر اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ پیچھے اس کی کلیسیا جو ہے پوری دعا کر رہی ہے, اور دعا کرنے کے وسیلہ سے پترس کو رہائی مل گئی. یہ ہے خدا کے سامنے جھکنا, یہ ہے دعا ایک ایسا ہتھیار جو خدا کے ارادوں کو بدل دیتا ہے. حنا کی مثال آپ کے سامنے ہے. حنا روتی ہے کیونکہ بھانجا ہے, اس کی سوت اسے چڑھاتی ہے, اور وہ کہتی ہے خداوند اگر تو اپنی لونڈی کو اتنا حقیر بنا لیا اس نے, اتنا حقیر بنا لیا اس نے, کہ لونڈی کا لفظ استعمال کرتی ہے جو کہ اردو پنجابی میں بہت ہی حقیر سمجھا جاتا ہے, مگر وہ اپنے آپ کو اس نے اتنا حقیر بنا لیا, خداوند کے سامنے جھک گئی. ایلی کہن سمجھتا ہے شاید کسی نشے میں ہے کیونکہ اس کی آواز نہیں آ رہی, اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ بیمار نہیں ہے. غور کیجئے گا جس بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں, وہ بیمار نہیں ہے, خدا کی طرف سے اس کا رحم بند کیا گیا ہے. ضرور اس حوالے کو دیکھیں, کیونکہ خدا کی طرف سے اس کا رحم بند ہے. وہاں خدا اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے. حنا نے دعا کی دلگیری کے ساتھ, خاکساری کے ساتھ, تو خدا نے اپنا ارادہ بدلا اور اس کے رحم کو کھولا اور اسے ایک بیٹا بخشا جس کا نام کلام میں لکھا ہے کہ اس نے سیموئل رکھا, جو نبی بھی ہوا اور بادشاہ بھی. یہ ہے دعا کی برکت, یہ ہے دعا بہت سے ارادے تبدیل کر دیتی ہے. آج ہمارے مسیحوں پر بہت سی سختیاں, بہت سی مصیبتیں آ رہی ہیں. کیا وجہ ہے؟ اگر کلام میں لکھا ہے کہ پری واریئر جو ہیں, اگر دو زمین پر خدا کہتا ہے کسی بات پہ متفق ہوں گے تو میں آسمانوں پر سے اسے پورا کروں گا. اگر زمین پر دو کسی بات کو اسے کھولیں گے تو میں آسمانوں میں سے اسے کھول دوں گا. آج ہم میں کمی ہے عزیزو, ہم میں کمی ہے کہ ہماری دعا اس کے حضور پہنچتی نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو دھونے کی ضرورت ہے, پاک کرنے کی ضرورت ہے. جیسے بگننگ میں آپ کو بتایا, خدا کہتا ہے کہ میں پاک ہوں اور مجھے پاک لوگ چاہیے. وہ کہتا ہے کہ میں وفادار ہوں, मुझे वफादार लोग चाहिए। वो कहता है कि मैं सच्चा हूँ, मुझे सच्चे लोग चाहिए। आज मैं और आप इस बात को अपने साथ लेकर जाएं कि कहाँ कोई हमारी ज़िंदगी में रखना है कि हमारी खानदानों में, हमारी कलीसियाओं में, हमारे चर्चिज में बरकत नहीं है। जाता हूँ मैं बाहर, दुख भी होता है, खादमों पर तौमते भी लगाई जाती हैं, पर इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। खुदा का बंदा दाऊद कहता है, अच्छा हुआ मैंने दुख सहा ताकि तेरे ऐन सीख सकूं। खुदा अगर खादमों पर ऐसी बातें भेजता है, ऐसे परेशानियां भेजता है, तो इसमें हमारे लिए सबक होता है। इसे पॉजिटिव लें, इसे नेगेटिव मत सोचें कि ये क्या हो गया है, मेरे को तो दो तरह बंदे ही ने नो। ये चीजें हमें डिस्करेज जरूर करती हैं, मगर इसमें हमारी तरक्की होती है अगर हम इसे पॉजिटिव तौर पर लें। तो जीजो, आज के कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आपको बरकत बख्शे। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए दुआ की जाए, अगर आज आपके बदन में कोई दुख है, तकलीफ है, तो यीशु के नाम में ईमान के साथ उसे दुआ को कबूल करें, तो यकीनन आपको शिफा मिलेगी, ज़रूर खानदानों में बरकत आएगी। हालेलुया।